ओम शांति। समर्पण एक अग्नि, समर्पण एक अग्नि। रूस के एक महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय ने कभी एक कहानी लिखी थी 1885 में, व्हाट मैन लिव बाय। उस कहानी में वर्णन है कि भगवान ने एक बार एक फरिश्ते को धरती पर भेजा। उसे इस काम के लिए भेजा था कि कोई एक महिला है, उसके प्राणों को लेकर आना है, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय निश्चित हो गया था। तो भगवान ने कहा, जाओ, वो जो महिला है उसको तुम, उसकी आत्मा को लेकर आओ। तो वो फरिश्ता वहां जाता है। तो वो जो महिला होती है, अभी अभी उसने 3 बच्चियों को जन्म दिया होता है। उसमें से 2 बच्चे जो होते हैं रो रहे होते हैं, तीसरा उसको लग के होता है। ऐसी कारुण दयनीय अवस्था में वो महिला होती है और भगवान ने आदेश दिया होता है इसकी आत्मा को लेके आओ। तो वो फरिश्ता सोचता है, अगर मैं इसकी आत्मा को ले आऊं तो ये जो बच्चे हैं जो अभी अभी जन्म लिए हैं, इनको कौन देखेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। तो उसके मन में ऐसा होता है कि मैं नहीं लेके जाऊंगा, उसको दया आ जाती है उस स्त्री पर। गरीब स्त्री होती है, पति मर चुका है, बच्चे जन्म दिए हैं, क्या होगा। तो वो फरिश्ता वैसा ही चला जाता है। जब भगवान सुनते हैं तो उसे दंड दिया जाता है कि तुमने अवज्ञा की है, तो तुम्हें धरती पर अब मनुष्य बनकर जाना पड़ेगा। और तुम जब अपने ऊपर ही हंसोगे 3 बार, उसके बाद ही तुम वापस आओगे। तो ये जो एंजल होता है माइकल नाम का, वो धरती पर मनुष्य बनकर जाता है और दिखाया है बहुत गरीब है, कड़कड़ाती ठंड, बारिश हो रही है, उसके पास कपड़े नहीं है, एकदम गरीब। और वहां से एक जूता बनाने वाला व्यक्ति, एक मोची जाते रहता है, साइमन नाम का, जो लोगों के जूते बनाता है और पैसे कमाता है। तो वो साइमन जब देखता है इस व्यक्ति को, जो कि फरिश्ता था और अभी शापित हो गया है, तो उसको दया आती है उसके ऊपर। उसके पास कपड़े भी नहीं है, वो अपना कोट उसको देता है और उससे कहता है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तो वो फरिश्ता जो कि अभी मनुष्य रूप में है, उस व्यक्ति के घर आता है। और जैसे ही घर आता है, वो जो साइमन होता है उसकी पत्नी उस पर जोर से चिल्लाती है, पहले ही घर में कुछ सामान नहीं है और उस पर तुम किसी और को लेके आ गए। तो वो जो फरिश्ता होता है, पहली बार उसको हंसी आती है, फर्स्ट स्माइल। वो सोचता है मन ही मन, ये स्त्री भी कैसी है देखो, इसे ये पता ही नहीं इसके घर कौन आया है। अगर उसे ये पता चल जाए कि मैं फरिश्ता हूं, तो ये इस तरह से गालियां ना देती, इस तरह से नहीं कहती, फर्स्ट स्माइल। तो वो रात भर वहां रहता है, दूसरे दिन उठता है तो पत्नी को थोड़ी दया आती है। वो जो साइमन होता है मोची, वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मेरा असिस्टेंट बन जाओ। तो वो जो फरिश्ता होता है वो कहता है ठीक है, और वो उसके साथ सेवा करने लगता है, काम करने लगता है। और कुछ ही महीनों में वो फरिश्ता बहुत एक्सपर्ट हो जाता है अच्छे अच्छे जूते बनाने में, और उसका बहुत नाम होने लगता है सब जगह, और उसकी वजह से उनको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं, दोनों को, पति पत्नी भी उससे खुश रहते हैं। एक बार राजा का एक सिपाही आता है, ये कहानी रशिया की है। राजा का सिपाही आकर कहता है कि राजा के लिए जूते बनाने हैं। तो वो साइमन अपने साथी या नौकर जो भी कहो फरिश्ते से कहता है, माइकल से, कि राजा के लिए अच्छे अच्छे जूते बनाने हैं। तो वो माइकल जूते बनाने में लगता है, वो फरिश्ता जो शापित है, और परंतु जूते बनाने की जगह वो चप्पल बना देता है। और जब वो साइमन देखता है कि इसने जूते बनाने बोला था और राजा के लिए इसने चप्पल बना दी, अब राजा के सिपाही तो मुझे दंड देंगे क्योंकि मालिक तो मैं हूं, तो उसको बहुत डांटता है कि तुमने ये क्या कर दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, जूते बनाने बोले थे चप्पल बना दी। तब तक राजा के सिपाही आ जाते हैं और राजा के सिपाही कहते हैं अभी अभी राजा की मृत्यु हो गई है। और रूस में, रशिया में ऐसा रिवाज है, जब किसी की मृत्यु होती है तो जूते नहीं चप्पल पहनाई जाती है। तो वो सिपाही कहते हैं ऑर्डर कैंसिल, शूज नहीं चप्पल चाहिए। तो वो माइकल फरिश्ता चप्पल लेके आता है और देता है। उसे दूसरी बार हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि वो कहता है, सोचता है, देखो ये राजा जूते बनाना चाहता था पर उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी मृत्यु आने वाली है, कितना मूर्ख है ये भी। सेकंड टाइम वो हंसता है। तीसरी बार जो उनकी जूते की दुकान बन जाती है, तब तक एक महिला आती है वहां पर, और वो महिला, उसके साथ तीन उसकी बेटियां होती है। तो जूते खरीदने आती है वो, तो वो साइमन जूते बेचने वाला उस महिला से पूछता है क्या चाहिए। वो कहती है जूते चाहिए मेरी तीन बेटियों के लिए। तो वो साइमन पूछता है या क्या तीन बेटियां आपकी ही है। तो वो महिला कहती है मेरी तो एक भी बेटी नहीं थी, ये तो अच्छा हुआ ये तीन बेटियां किसी एक गरीब स्त्री की बेटियां थी जो कि जन्मते ही मर गई थी, और अच्छा हो गया वो मर गई, नहीं तो इनकी इतनी अच्छी पालना कहां से हो सकती थी, ये तो मैंने इन तीनों बेटियों को गोद में ले लिया, तीनों बेटियों को मैंने गोद लिया और देखो अभी कितनी खुश है ये तीनों। तो वो फरिश्ता सोचता है देखो ये वही तो तीन छोटी छोटी कन्याएं हैं, बच्चियां हैं, और मैंने क्या किया था, भगवान ने कहा था उनको उसको लेके आओ, पर मैंने, मुझे दया आ गई और मैं उसको लेके नहीं गया। तो उसे फिर अपने ऊपर हंसी आती है, और जब तीन बार हंसी आती है उसके बाद वो जो माइकल होता है फरिश्ता, वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाता है, शाप से जैसे मुक्त हो गया। और फिर वो साइमन उसको पूछता है, तब वो अपनी पूरी कहानी उसको सुनाता है कि मैंने ऐसे ऐसे अपनी बुद्धि चलाई, अपने रीति से सोचा, मुझे लगा कि मैं ये जो सोच रहा हूं वो अच्छा है, पर मैं कितना मूर्ख था। आवाज कम। तो वो कहता है कि मैं वास्तव में फरिश्ता था और इस तरह मैंने भगवान की आज्ञा की अवज्ञा की थी, उस वजह से मुझे ये शाप मिला था। ये कहानी इसलिए सुनाई जाती है, ये कहानी है सरेंडर की। जो भगवान कहे वही राइट है, जो उसकी इच्छा वही राइट है। उस फरिश्ते ने अपने दिमाग चलाया, वो सोच रहा था कि ये महिला मर जाएगी बेचारी, इनका क्या हुआ, क्या हुआ, अच्छा ही हुआ, नहीं तो वो गरीब माँ उन बच्चों की पालना नहीं कर सकती थी, अभी कितनी अच्छे से पालना हो रही है। तो वो फरिश्ता अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है और चला जाता है। तो समर्पण अर्थात जिसमें हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, समर्पण अर्थात जिसमें हमारे कोई विचार नहीं, समर्पण अर्थात जिसमें अपनी व्यक्तिगत कोई मत नहीं, समर्पण अर्थात सब कुछ स्वाहा, समर्पण अर्थात सब कुछ उसका, मेरा कुछ भी नहीं। कल की साकार मुरली में एक वाक्य था जो कल या परसों, जो गरीब है वो साहूकार बनेंगे, जो साहूकार है वो गरीब बनेंगे। साहूकार जो है जो साहूकार बनेंगे वो साहूकार अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। आज भी है, एयर कंडीशन की टिकट किस कौन लेते हैं संसार में, साहूकार, साहूकार अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा है समर्पण की, संपूर्ण समर्पण। तो समर्पण एक अग्नि की तरह है, आग, और आग क्या करती है, जलाती है। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। यदि सूर्य की तरह प्रकाशित होना है और करना है दूसरों को, तो पहले क्या करना पड़ेगा, सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन अर्थात समर्पण, समर्पण में टोटल 8 बातों का समर्पण है, टोटल 8 चीजों का समर्पण। समर्पण अर्थात जब तक ये 8 चीजें पूर्ण नहीं हो, वो समर्पण अधूरा समर्पण है, आधा समर्पण है, हाफ सरेंडर है। समर्पण का संबंध कपड़े और बैच, स्थान या समारोह से नहीं है। ये 4 चीजें जो है, ये मत समझ लेना ये हो गया मतलब समर्पण हो गया। कपड़े व्हाइट, बैच, स्थान कौन कहाँ रह रहा है, कोई यहां पर भी बैठ के समर्पित नहीं है और कोई संसार में भी बैठा हुआ है और रहता है और वहां समर्पित है, और चौथा सेलिब्रेशन, समर्पण समारोह। ये हो गया मतलब समर्पित, ये नहीं हुआ मतलब नहीं। इन चारों चीजों से इसका ऊपर ऊपर का संबंध है, अंदर का समर्पण कुछ और है, और वही वास्तविक समर्पण है। ऊपर से समर्पण तो बहुत आसान चीज है, परंतु वास्तविक समर्पण है आंतरिक, इंटरनल सरेंडर। तो इसमें टोटल 8 चीजों का समर्पण है। सबसे पहला तन, बॉडी, शरीर। अब ये शरीर जो है वो ईश्वरीय कार्य के लिए है, भोग और विलास के लिए नहीं, सुख सुविधाओं के लिए नहीं। हाँ, इस शरीर की संभाल करनी है, इसकी देखभाल करनी है, इसको स्वस्थ रखना है। ऐसे भी नहीं कि इसको आलस और अलबेलेपन और भोजन में डुबा दो, और उसमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाए, प्रकृति के विरुद्ध चले जाए, शरीर की संभाल करनी है परंतु ट्रस्टी होकर, ये समझकर संडे की मुरली, शरीर भी तेरा, तेरी अमानत तेरा, तू जाने बीमारी भी आ जाए तो। जैसे ये देह में मैं हूं परंतु ये देह मेरी नहीं, ये देह उसको दे दी, व्यक्तिगत अधिकार अब इस शरीर पर नहीं, ये सूक्ष्म समर्पण है, स्थूल भी है परंतु सूक्ष्म भी, दोनों चीजें इसमें समाई है। शरीर में बीमारी आ जाए, व्याधि आ जाए, दर्द हो, पीड़ा हो, वो भी समर्पण। और दूसरी एक बात, इस शरीर को सताना भी नहीं है, पीड़ा भी नहीं देनी है। विदेश का संत सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, मरते समय वो अपने शरीर से बात करता है। वो कहता है, हे मेरे शरीर, मैं तुझे बहुत धन्यवाद देता हूं, पर मुझे माफ करना, मैंने तुझे ठीक से नहीं संभाला, बहुत तुझे यातनाएं दी, इतने उपवास किए, इतनी कठोर तपस्या की और तुझे बहुत सताया। वो अपने ही शरीर से माफी मांगता है। शरीर की संभाल करनी है, देखभाल करनी है, परंतु उसे एक तरफ तो भोग विलास में डुबो नहीं देना है और दूसरी तरफ इतनी यातनाएं नहीं देनी है कि वो काम करना बंद हो जाए। प्यार से चलाना है, जैसे घोड़ा होता है, अगर घोड़े को बहुत मारते ही रहे, मारते ही रहे, मारते ही रहे, मारते ही रहे, तो क्या हो जाएगा? चलाते ही रहे, चलाते ही रहे, चलाते रहे, उसको रेस्ट दे ही नहीं रहे, थक जाएगा, गिर जाएगा, चक्कर आएगी उसको, बीमार पड़ जाएगा। और यदि बीमार पड़ जाए तो अच्छे संकल्पों से उसे ठीक करना है, साथ में दवाई अगर लेनी पड़े तो वो भी लेनी है। तो सबसे पहला जो समर्पण है वो कौन सा है? शरीर, देह का समर्पण। दूसरा समर्पण है मन, मन अर्थात विचार, मन अर्थात संकल्प, मन अर्थात भावनाएं, मन अर्थात वृत्ति, दृष्टिकोण, मन अर्थात स्मृति, इन सभी चीजों का समर्पण। यह तो सबसे सूक्ष्म समर्पण है कि विचार भी उसके, भावनाएं भी उसकी, यादें भी उसकी, स्वप्न भी उसके, ये बहुत सूक्ष्म समर्पण है। लंबे समय का अभ्यास इसमें चाहिए कि जो जो मन में आ रहा है वो सब कुछ उसको दे दिया, स्वाहा, अब तुम जानो। संडे की मुरली, तुम्हारा है तुम जानो, मन भी उसको दे दिया। ये मत कहना, क्या नहीं कहना, मेरे मन नहीं लगता, बुद्धि एकाग्र नहीं होती, योग नहीं लगता, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरे बच्चे का योग नहीं लगता, उसकी बुद्धि का ताला खोलो। संडे की मुरली में 7 पॉइंट्स बाबा ने सुनाए थे। ऐसा क्यों कहते हो, मेरे बच्चे का ताला खोलो, बुद्धि का, मेरे गांव का और मेरे देश के बुद्धि का ताला खोलो, कभी कहा? हद नहीं बेहद। तो मन को भी साक्षी होकर देखना, मन को भी, जैसे मन एक वस्तु है, विचार वस्तु है, एक थॉट इज अ थिंग, उसको उठाया और दे दिया, तुम जानो। बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, एक ही चीज के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक होगा। बाप दादा को हर बच्चा प्रिय है, बाप को बच्चे प्रिय ही होते हैं। बाप ने ठेका लिया है तन मन धन से हरेक को सहज रखने का, संडे की मुरली में तन मन धन से सहज रखने का। इसलिए दूसरा समर्पण कौन सा है? मन का समर्पण। मन अर्थात मुख्य रूप से विचार संकल्प जो चल रहे ढेर सारे, उन सबको अर्पण कर दो। ये विचार तुम्हारे हैं, तुम जानो, मुझे अब सोचने की जरूरत नहीं, फुल स्टॉप। चिंता, वरी, फियर, एंग्जाइटी, फिक्र, उसको दे दिया सब कुछ। डिस्टर्बिंग थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, व्यर्थ थॉट्स, सब स्वाहा। तीसरा समर्पण है धन का समर्पण। जो भी धन आ रहा है ये नहीं सोचना ये मेरा है, हाथों में करोड़ों रुपए आएंगे और चले जाएंगे, परंतु इसमें से मेरा कुछ भी नहीं। स्टूडेंट्स के द्वारा दिया हुआ एक एक पैसा, एक एक रुपया, पाई पैसा, सब कुछ शिव बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं, मैं अलग हूं। गरीबों के पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा, बाबा के महावाक्य है। इसलिए समर्पण अर्थात धन का भी समर्पण। जो धन आया सब उसका, जो धन आ रहा है उसकी सेवा के लिए, जो धन मधुबन के लिए आ रहा है सब मधुबन में चला जाए, जो जहां के लिए आ रहा है उसको वहां जाने दो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। जैसे बैंक में ऑफिसर होता है, बैंक में काम करने वाले मैनेजर होता है, दिन भर पैसे गिनते हैं, पर उसको पता है ये पैसे मेरे नहीं है, उसकी अपने सैलरी मिलेगी महीने में एंड में, खुश होता है कि अरे आज किसी ने इतने डिपॉजिट कर लिए 10 लाख, कुछ ज्यादा खुश होता है, या फिर दुखी होता है अरे आज किसी ने 12 लाख विड्रॉ करके चला गया, ना तो उसे खुशी होती है ना तो दुख होता है, क्योंकि उसके है ही नहीं। परंतु हाँ, उसका काम क्या है? संभाल। इसका मतलब ये नहीं कि वो संभाल नहीं करेगा, 10 रुपए इधर चले गए 15 रुपए उधर चले गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं, क्योंकि इधर उधर गया तो उसकी सैलरी से कटेगा एंड में। इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखता है वो, एक एक का हिसाब रखता है पूरा, परंतु मैं पर नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। एक तो सेवा केंद्र, बाकी यहां कुमारिया बैठी है, जो भी पैसे हो उन पैसों में आसक्ति लगाओ। जो है ये हमेशा समझना, जो आज हमारे पास है कल किसी और के पास होगा, जो आज इस हाथ में है कल किसी और हाथ में होगा, और जो है उसको सफल करना है। सेवाओं में सफल करना, कुछ अपने लिए रखना, कुछ भविष्य की प्लानिंग बनाने के लिए रखना, कुछ माँ बाप के लिए, यदि माँ बाप कमाते ना हो तो। कुछ दिन पहले कुमारियों से मुलाकात था, लास्ट संडे के लास्ट संडे, नौकरी के लिए बाबा ने कहा था यदि मजबूरी है, यदि माँ बाप कमाने वाले नहीं है तो नौकरी करो, कमाओ। परंतु समर्पण भाव वहां पर भी हो। तो तीसरा समर्पण है धन का, तन मन धन। चौथा समर्पण है बुद्धि का समर्पण। जैसे वह फरिश्ता माइकल, उसने अपनी बुद्धि चलाई, भगवान ने भेजा था जाओ उस महिला की आत्मा लेके आओ, उसने कहा अरे मैं कैसे लेके आऊं, वो तो मर रही है, उसके बच्चों का क्या होगा, उसको कौन देखेगा? तो क्या भगवान को पता नहीं था उसके बच्चों का क्या होगा? भगवान को तो पहले ही पता था। तो ये समर्पण हुआ क्या? नहीं हुआ। इसके लिए उस फरिश्ते को वापस आना पड़ा धरती पर, मनुष्य बन गए 3 बार, एक बार और फिर 3 बार हंसने के बाद मुक्त हुआ, जब उसे अपनी गलती समझ में आई। तो बुद्धि का अभिमान, बुद्धि का अहंकार, मुझ में ये विशेषता है, मैं भोजन अच्छा बनाती हूं, मैं भाषण अच्छा करती हूं, मैं सोचती अच्छा हूं, मेरी हैंडलिंग पावर अच्छी है, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, मुझ में ये गुण है, मुझ में ये विशेषता है, बाकी में नहीं है, मुझ में ये सेवा मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, मैं सफाई अच्छी करती हूं, मैं मुरली बहुत अच्छी चलाती हूं, मेरी जान पहचान बहुत है मधुबन में, मैं सबको जानती हूं, सब भाइयों को जानती हूं, तुम अभी छोटी हो, तुमको कुछ पता नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूं, तुम थोड़ी कम बुद्धि वाली हो, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूं, ये सब क्या है? बुद्धि का अभिमान, बुद्धि का अहंकार। समर्पण अर्थात बुद्धि को भी स्वाहा कर दिया, फिर उसमें कुछ नहीं रहा। मेरी बुद्धि शार्प है, मुझे याद ज्यादा रहता है, बुद्धि को भी अर्पण कर देना। तुम सुना दो, उसको दे देंगे ना तो वो उसको प्रॉपर कार्य में लगाएगा, जो विशेषता उसमें है उसको और निखारेगा। चौथा समर्पण है बुद्धि, पांचवा समर्पण है संस्कारों का समर्पण। ये बहुत सूक्ष्म समर्पण है, मन के संकल्पों से भी सूक्ष्म है, क्योंकि संकल्प तो फिर भी हम सोचते हैं, उसको स्वाहा कर दिया, परंतु संस्कार तो अपने आप काम करते हैं, डीप रूटेड, बहुत गहरे है, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में, जो भी आसुरी संस्कार है, विकारी संस्कार है, व्यर्थ के संस्कार है, निगेटिव संस्कार है, अनावश्यक संस्कार है, उसको समर्पण करना। विधि है बात करना कि ये ले लो, ये मेरे नहीं है, उसके सामने रख देना। वो जाएंगे नहीं इतने जल्दी, परंतु रखने का अभ्यास करना है। संस्कारों के प्रति जो हमारा लगाव है उसको कम करना है। आदतें लंबे समय से रहने के कारण पक्की हो गई संस्कार, उसको भी क्या करना है? स्वाहा। पांचवा समर्पण है संस्कारों का समर्पण। छठवां समर्पण कर्म और कर्म के परिणाम। छठवां समर्पण कर्म और कर्म के परिणाम। एक है कर्म का समर्पण और उससे भी सूक्ष्म है उसके परिणाम का समर्पण। सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की, परंतु असफलता प्राप्त हो गई तो दुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, हजारों लाखों खर्च किए, बहुत बड़ा मेला किया, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, कईयों ने कोर्स किया, पर एक महीने के अंदर सब चले गए, कोई भी नहीं बचा, कर्म का समर्पण अर्थात जो कर्म किया वो भी स्वाहा, फिर उसका जो परिणाम आएगा पॉजिटिव नेगेटिव, सफलता असफलता, सक्सेस फेलियर, वो भी समर्पण, वो उससे सूक्ष्म है। कर्म किया, सक्सेस मिल गई, बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश। प्रोग्राम किया, बहुत सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा खुशी हो गई, तो ये समर्पण नहीं हुआ, न्यूट्रल। हाँ खुशी हुई, प्रोग्राम हुआ, अच्छा है, उसका था, उसने कराया। उस सक्सेस में भी अट्रैक्शन अटैचमेंट ना हो, सेवा से प्राप्त होने वाला सक्सेस। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के जीवन में दिखाते हैं कि चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त छोटा था उसको एक विजय यात्रा पर भेजा था, बहुत तैयारी की थी कि ये यात्रा में अगर तुमने कर ली तो सब तुमको वो विजय मुकुट मिल जाएगा। और वो इतने उमंग उत्साह से जाता है, बहुत सारी मुश्किलों को पार करता है, हजारों मुश्किलें, इतनी कठिन यात्रा होती है वो, और वो विजय यात्रा पूरी कर कर वापस लौटता है, और उसके बाद में वो खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेशन। तो चाणक्य आके कहते हैं कि तुम समय की व्यर्थ कर कवा रहे हो, अभी दूसरे की तैयारी करो आगे की। जब तक वो कह रहा था कि यही लास्ट है तुम्हारा, इसमें अगर तुम सफल हो गए तो सब कुछ मिल जाएगा, और जैसे ही वो प्राप्ति हुई और ये लोग सेलिब्रेशन कर रहे, वो कहता है वेस्ट ऑफ टाइम। सेलिब्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं करने, अब आगे बढ़ो। ये भी एक अटैचमेंट हो जाएगा। एक्शन एंड इट्स फ्रूट, कर्म और उसका फल, कर्म और परिणाम, इन दोनों से डिटैच अर्थात समर्पण। अगला समर्पण है संबंध संपर्क का समर्पण। जो भी रिलेशनशिप से आपस में, टीचर और स्टूडेंट्स, टीचर और उनके बॉस, हेड, इंचार्ज, प्रभारी, टीचर और साथी, टीचर और जूनियर्स, टीचर और बाहर वाले लोग, टीचर और मधुबन निवासी, टीचर्स और भाई, टीचर्स और कुमार, टीचर्स और कन्याएं। टीचर को अगर बीच में रखे तो इतने सारे संपर्क है, यहां वहां अलग अलग अलग, सारे संबंध और सारे संपर्क स्वाहा। व्यक्तिगत ये अच्छा लगता है, वो अच्छा है, ये अच्छा है, ये कन्या अच्छी है, वो कुमार अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, वो मधुबन निवासी बहुत अच्छा है, ये बाहर का कोई व्यक्ति है बहुत ही ज्यादा सहयोगी है, अटैचमेंट नहीं चाहिए, रहने दो सहयोगी, रहने दो जितना अच्छा है। किसकी सेवा कर रहे हैं? बाबा की सेवा कर रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत उसमें कुछ नहीं। इसलिए समर्पण अर्थात संबंध का भी समर्पण, संपर्क का भी समर्पण। लौकिक मां बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अभी भी उनसे आसक्ति, अभी भी उनसे लगाव, अभी भी उनसे बहुत बार बार बातें, फोन कॉल, अटैचमेंट, लौकिक से, ये समर्पण नहीं है। बैच लग गया, वाइट आ गया, पर आसक्ति तो गई नहीं। अगला कितवा, सातवा कि आठवा? सातवा है समय का समर्पण, समय या श्वास। आठवा ना, आठवा, आठवा लास्ट है समय और श्वास। हमारा जो भी समय है वो सब उसकी सेवा के लिए, ज्ञान के लिए, योग के लिए और सेवा के लिए बस। व्यक्तिगत इंटरेस्ट, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, ये सारी चीजें जहां जहां हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अर्थात समर्पित नहीं है। समर्पण, सरेंडर अर्थात समय मेरा नहीं है, अब मेरे लिए नहीं है, मेरा टाइम किस लिए है, उसके लिए। ये भी सूक्ष्म है, आठों ही चीजों में एक एक चीज का समर्पण, सूक्ष्म समर्पण। और इस समर्पण के लिए अथाह सहनशीलता चाहिए, इस समर्पण के लिए बहुत सहन करना पड़ेगा। परंतु जो जितना अधिक सहन करेगा उतना बड़ा सहनशाह बनेगा, क्योंकि ये सहन कोई संसार के व्यक्ति के लिए सहन नहीं कर रहे हम, भगवान के लिए कर रहे हैं, उसकी आज्ञा है इसलिए कर रहे हैं, वो अब इस समय आया है ये निश्चय है, इस निश्चय के लिए सहन कर रहे हैं, जीवन उसको दिया है इसलिए सहन कर रहे हैं। तो जब अपने जीवन में सहनशीलता आएगी तब यह समर्पण होगा, जब संपूर्ण निश्चय हो जाएगा कि यही राइट है और यही एकमात्र मार्ग है, तब समर्पण होगा। संसार में हजारों मार्ग है, उसका कोई एंड नहीं है। नौकरी करो, एक डिग्री, दूसरी डिग्री, संडे की मुरली, कुमारियों से मुलाकात, कल कल करते काल आ जाएगा, इतनी डिग्री आए, खत्म ही नहीं होगी कभी। तो अपने समर्पण के लिए ये चेकिंग लिस्ट बनानी है, पहला तन, दूसरा मन, तीसरा धन, चौथा बुद्धि, पांचवा संस्कार, छठवा कर्म और कर्म के परिणाम, सातवा संबंध, संपर्क और आठवा समय या श्वास। एक एक श्वास में उसकी याद समाई हो, एक एक पल उसकी सेवार्थ हो, एक एक सेकेंड पुरुषार्थ के लिए हो, एक एक मिनट ज्ञान के चिंतन के लिए, एक एक मिनट उसकी सेवा ज्ञान सुनाने के लिए, एक एक मिनट ज्ञान के चिंतन के लिए, एक एक मिनट योग तपस्या करना और कराने के लिए, एक एक पल धारण करने के लिए सारे दिव्य गुण और सारी शक्तियां स्वयं को शक्तिशाली बनाने के लिए। अगर ये न करके कुछ और किया जा रहा है तो वो समर्पण नहीं, झूठा समर्पण है, हाफ कास्ट समर्पण, फॉल्स समर्पण, सूडो सरेंडर, आर्टिफिशियल सरेंडर, सुपरफिशियल सरेंडर, एग्जीबिशन वाला सरेंडर, शो ऑफ, हिपोक्रेसी, दंभ, आडंबर, धोखा, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन। ऐसे ही दुनिया को बुद्धू बना रहे। समर्पण समारोह, ब्रह्मा भोजन, लेन देन, समर्पण सूक्ष्म है तो उसको उतना ही सूक्ष्म समझना है, और जो जहां कमी है उसको भरना है। जो समर्पण में है वो दर्पण में है, जो ऐसे समर्पण में है उनका जीवन क्या बन जाता है, दर्पण, जिसमें दूसरी आत्माएं देख सकती है कि मुझ में ये कमी है। इतनी भरपूर अवस्था हो। अच्छा, ओम शांति।